نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاضل كما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے, کئی بار ہم اس کو سن چکے ہیں علماء کرام سے. اس حدیث کو پھر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روز قیامت میں سات انسان ایسے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عشق سے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے, اور اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے عطا بھی فرمایا, بیان بھی فرمایا, اور سبحان اللہ اللہ کا کرم دیکھیں, فضل دیکھیں انسانوں پر, کتنے بڑے انعام کو چھپایا بھی نہیں. ہمیں باقاعدہ طور پر وہ اعمال بتا دیے کہ اگر ہم وہ اعمال کر لیں اس دنیا کے اندر تو کل قیامت جو ایک ایسا ہولناک سین ہوگا کہ اگر انسان اپنے حال سے اس قیامت کے بارے میں سلسلے میں کچھ چیزیں پڑھنے لگے تو یقیناً اس کا دل اور جسم سارا لرز جاتا ہے اور پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے وہ شخص. اس کی ہولناکیاں اور وہ واقعات, وہ سب کچھ جو ہے میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, جو بھی اس وقت شخص زندہ ہے اس کے ساتھ ہی پیش آئیں گے. قیامت کے بارے میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بہت نزدیک ہے. اتنے واقعات ہیں قیامت کے کہ صحابہ کرام جب ان واقعات کو سنتے تھے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی, کئی کے روز تک نہ سو سکتے تھے اور نہ کھا سکتے تھے. اتنے ہولناک واقعات ہوں گے قیامت کے اندر, لیکن اس قدر شدت سے جتنی شدید ہوگی وہ اس وقت روز قیامت, جہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا دھوپ کا اور پیاس کا ہوگا, جیسے بعض حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ زمین جو ہے تانبے کی بنا دی جائے گی اور یہ سورج جو ہے سوا نیزے پر آ جائے گا, کروڑوں ہاں کروڑوں ہاں میر دور ہے, آپ کچھ دیر بھی دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے, رنگ چینج ہونے شروع ہو جاتا ہے, گرمی سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے, جسم کی حالت غیر ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آپ, ہندوستان کی گرمی میں بیٹھ کے دیکھیں, پانچ چھ دن کے لیے آپ جائیں گے تو واپس آتے ہیں تو رنگ بدلا ہوتا ہے, حالانکہ اس وقت بھی آپ کمروں میں بیٹھتے ہیں, بہت کم باہر نکلتے ہیں, لیکن اتنا اثر ہو جاتا ہے اس گرمی کا. تو بھائی ایک حقیقت ہے اتنی بڑی, زمین جو یہ ہے اس وقت ایک میٹیریل کی بن جائے گی تانبے کی, اور یعنی یہ کہ وہ یہ زمین جو ہے اس کو ابزورب کر لے گی, हीट अब्सॉर्ब करती है, लेकिन तांबे की जो खासियत है वो पलट के देता है हीट दोबारा उसी अंदाज से, रिटर्न करता है हीट को। और हम लोग बिल्कुल उस हालत के अंदर होंगे, उस मुकाम पे खड़े होंगे, बेयाद मददगार, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होगा, सूरज इस तरह चमक से बिल्कुल नज़दीक आ चुका होगा, उसकी तपिश का अंदाज़ा आप क्या कर सकते हैं, कितनी सेंटीग्रेड होगा वो उस वक्त में। हर आदमी अपने पसीने के अंदर डूबा होगा, आप अंदाज़ा लगा लें, पसीने में डूबा होगा, इस कदर पसीना होगा, कुछ सुझाई नहीं देता होगा। और ये वो ऐसी सूरज की रोशनी होगी कि रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा होगा उसमें, अल्लाह ताला का चमक सूझ रहा होगा लेकिन क्या होगा, इतना अंधेरा होगा, इतनी डार्कनेस होगी कि इंसान को कोई दूसरा नजर भी नहीं आएगा। अल्लाह माफ फरमाए, आप देखें ये हालत, सोचें आप क्या होगा हमारा। तो ये आज दुनिया में हमें जिंदगी अल्लाह पाक ने दी है, 13 साल 15 साल 14 साल अल्लाह पाक ने स्टेजेस रखे हैं हर जिंदगी के। 7 साल से अल्लाह ने कह दिया नमाज पढ़ो, हद कम कर दिए, बच्चों को बच्चा नहीं रहा। तो हम तो बूढ़े हो जाते हैं, कह जी अभी क्या दाढ़ी रखनी, अभी तो जवान है, शादी हो जाएगी तो अब देखेंगे, हज कर लेंगे तो कब करेंगे। धोखा है दुनिया, चमक चमक के सितारों मुझे फरे बना दो, छह ज्यादा मुझे अपने, चमक चमक के सितारों मुझे फरे बना दो, वफा के नाम पे यारो मुझे फरे बना दो। ये सब फरेब है दुनिया के अंदर, सितारे चमकते जो नजर आते हैं ना हमें, सितारों से मुराद क्या है कि दुनिया की लज्जात चीज़ें जो हमें इन अमाल से रोकती हैं, कि जो इस वक्त हमारे लिए प्रोटेक्शन होंगे उसके लिए। अल्लाह जुल्म करना नहीं चाहते, अल्लाह ने पहले बता दी सब चीज़ें, वादा कर दी हमारे, ये नहीं कुछ छुपा के रखी, वादा की है कि हालत है आएंगे आप, छुपा नहीं रहे अल्लाह ताला, छुपाया तो नहीं। और ये भी कहा आप बच सकते हैं इससे, यदि सुनाऊंगा मैं आप, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बात की ही नहीं जिंदगी, इंसान को पैदा किया, मखलूक को पैदा किया, जन्नत को पैदा किया, तो जन्नत हमारे लिए बनाई अल्लाह ताला ने, रास्ते हैं उसमें जाने के, बहुत मज़ेदार रास्ते हैं, हमसे रहेंगे इसी दुनिया में, हमने वो रास्ते बनाने जो सीधे डायरेक्ट आपको जन्नत में पहुँचा सकते हैं। देखिए सोचें, ऐसा नहीं है कि भाई ज़रूरी हालात से हमें गुजरना पड़ेगा, तो खुद हमें ये जो फरेब देते हैं चमक चमक की जो चीज़ें सारी, तो इससे बचे आदमी, चमक चमक के सितारों हमें फरेब बना दो, वफा के नाम पे यारो हमें, ये वफा करेंगे दुनिया हमारे साथ, कि वफादार हो सकती ये चीज़ें। कितना अच्छा नक्शा खींचा है शायर ने कि सितारे जो हैं वो रात को चमकते हैं, उसके बाद उनकी चमक कहाँ जाती है, यही सुबह होती है गायब हो जाते हैं, यही सारी बेवफाई है, क्यों धोखा खाते हैं पैसे लोगों से, ये तो हमें वफा के नाम पे धोखा दे रहे हैं, एक दोस्त हुआ दुश्मन है सब। तो ये हालात जो हमारे सामने जो पेश किए गए हैं, सहाबा कराम सुनते थे, आज हम भी वही बातें सुन रहे हैं, वही हदीसें हैं, वो सब ज़बानी सुनते थे, हदीसें हम तक पहुँच गई, क्यों नहीं हम समझते इस बात को, उन अमालों को क्यों हम छोड़ देते हैं जो हमारे लिए प्रोटेक्शन है उन दिनों के, उस वक्त के लिए। मुझे बताया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त ये देख रहे हैं, धूप और प्यास, पूछिए ना प्यास का क्या हाल है वो सब, और कितनी देर के लिए ये भूल जाए आप, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं, 50,000 years को भी शुमार कर लें आप, वो भी इस ये साल नहीं बल्कि इधर के उधर के साल, या तो वो या ये, अल्हम्दुलिल्लाह आज समझ जाए हम होश संभाल लें तो इसी पोजिशन का कहता है बेहिसाब जन्नत में भेज दूंगा। कितना चांस है हमारे पास, गोल्डन चांस, वफा के नाम पे यारो हमें फरेब ना, ये फरेब है दोस्तों। कितना खूबसूरत जिंदगी इंसान की, खुदा की कसम, एक सा समझ जाए थोड़ा सा, देखें हम बस 7 साल में शऊर आ जाए, माँ बाप अच्छे हों समझा दें बात, अल्लाह उसको समझ दे दे, बस उसी वक्त समझे के बस मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ये नहीं कि अभी इतना बड़ा होऊंगा, अभी इतना बड़ा जाऊंगा, अभी उस उम्र में जाऊंगा, नहीं नहीं बिल्कुल अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते, या तो उस तरफ से गुजरना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं, खड़े रहो बस धूप के अंदर, अरे कमाल अल्लाह ताला बता रहा है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हदीस में के सात इंसानों को अल्लाह पाक इस हालत में कयामत के अंदर सुभान अल्लाह सिलेक्ट करेगा, सात जिसमें खास सात खसूसियत होंगी। ये कब सुनाया जा रहा है हमें, फिर कयामत तो नहीं आई ना, होश है ना, अकल भी है ना, हिम्मत भी है ना, ताकत भी है ना, कुरान भी है ना, मस्जिदें हैं ना, नमाज पढ़ सकते हैं ना, तो फिर क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं मस्जिद में सुबह आते, किस चीज के इंतजार है। नींद का गलबा, जब नींद का गलबा आने लगे तो कम से कम उस क़यामत के हौलनाक मंजर को सोच लिया करें कि मैं वहां खड़ा होंगे तो मेरा हाल क्या होगा, आज ये तकलीफ बर्दाश्त कर लेता हूं बिस्तर से उठकर चला जाऊं, जरा सोच लिया करें। जब अपने माँ बाप के इंसान नाफरमानी करता है दुनिया की लज्जात में आकर, वफा के नाम पे यारो मुझे फरेब, ये धोखा दे रही है ये दुनिया हर शिकल में, औरत की शिकल में, माल की शिकल में, ये सब धोखा दे रही है। माँ बाप के इंसान नाफरमानी करना शुरू कर दे, लोगों के हकूक मानना शुरू कर दे इस वजह पर, तो जरा होनाक सोच ले, तन दिन की लज्जत के लिए इंसान ये काम कर रहे हैं। अकल करे इंसान, अकल शऊर दिया नफी खल्क समावाते हुए अर्द, क्या अल्लाह ताला कहता है कि ये सब चीजें जो बनाई इस पर अक्ल इस्तेमाल करो, उली लबाब बनो, बख्श जया ना करो, आना ही आना है। अल्लाह पाक कहता है क्यामत आनी ही आनी है, ये हालात होने ही होने हैं, कोई भी नहीं बचा सकेगा उस वक्त। आज आज वक्त है, अल्लाह पाक ने चांस दे दिया हमें जिंदगी के अंदर, इसको तमाशा ना बनाओ, खेल कूद ना बनाओ, ये सब वफा के नाम पर हमें धोखा दिया जा रहा है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं दोस्त, बताओ। साथ तो कितने बड़े चांस दे दिए अल्लाह पाक ने, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, इससे एक ही अमल कर ले, आज एक ही अमल कर ले बताए, और कितनी जल्दी बता दिया हमें। ये आप 12 साल का बच्चा भी सुनता है, 13 साल का भी सुनता है, 14 साल भी सुनता है, औरत भी सुनती है, मर्द भी सुनता है, बूढ़ा भी सुनता है, जवान भी सुनता है, सेहतमंद भी सुनता है, जाहिल भी सुनता है। अब इसमें किस किस इलम की जरूरत है भाई, इस हदीस को सुनने में नहीं पता, कौन से दारुल उलूम में जाना पड़ेगा आपको इस हदीस को समझने के लिए, कौन सी इतनी गहराई है इस हदीस के अंदर मुझे बताएं, कौन खड़ा हो कुछ कहेगा जी या अल्लाह ये बात तो हम आलिम नहीं थे, हम दारुल उलूम नहीं गए तो हमें हदीस बड़ी नहीं, तो हमें तो पता नहीं चला, हम ये तैयारी कर लेते। समझ आ रही है बात, ही नहीं आ रही, जिसके नहीं आ रही हाथ खड़ा करें। कितने का है, सात आदमी यानी सात अमाल, आदमी समझ बात क्या है, सात अमल ऐसे हैं, सात अमल जिसमें एक एक अमल में जो कर लेगा इनाम क्या है आज नहीं दिया जाएगा, हम तो कहते हैं आज ही मिल जाए। नमाज पढ़ने तो क्यों पढ़ते हैं यार, रिजक चल पड़े यार, कोई हमारा काम हो जाए, किसी अल्लाह वाले के पास भी जाते हैं यार कोई तावीज़ बना लें, यार कोई इसकी बीमारी हो जाए इसकी, किसी को फिक्र नहीं उस क़यामत के वक्त का। अल्लाह हर वक्त को हम किस चीज़ पर लगा देते हैं, अपनी इसी दुनिया पर ही लगा देते हैं। अगर कोई इबादत का मौका मिल रहा है, कोई ऐसा रास्ता मिल रहा है या उसी चीज मिल रही है, वो भी कहाँ खत्म हो रही है, दुनिया के अंदर ही खत्म हो रही है। जिस तरह गिरते हैं ना सारे दरिया जाके, कहाँ गिरते हैं सब एक ही समुंदर में गिरते हैं, सुभान अल्लाह। हमारे तो पूरे दरिया जितने भी हैं ना मार्फत के, कहाँ खत्म होते हैं, दुनिया समुंदर में डूब जाते हैं जाके अल्लाह के बंदो। हाय हाय सोचो जरा इस बात को, वफा के नाम पे यारो हमें फरेब ना दो, क्यों फरेब खाते हो अकलमंदो। इनमें से एक अमाल आदमी कर ले, इनाम अल्लाह पाक क्या दे रहे, इस मौके पर जो क़यामत का बताया गया जो आनी है, तो मैं उस वक्त जिसने ये अमल कर लिया, अल्लाह पाक कहते हैं उस वक्त उस इंसान को, उस औरत को, उस बच्चे को मैं अपने अर्श के साए के नीचे जगह दूंगा। बताएं कितना बड़ा इनाम होगा, ये भी नहीं कर सकते जिंदगी में से, इन्हें ये जो अमाल बताए इसमें से एक भी नहीं कर सकते, इतने लाचार हो गए। सोचिए चले इस मजलिस की नस्बत से मैं वो बात कर देता हूं, इस मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह अमल मिल रहा है हमें अल्लाह के फजल से, शुक्र कहें अल्लाह, बोलो सारे अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो शुक्र मुकाम आ गया। देखो कहां किस तरह अच्छी सोबतों के बाद इंसान कैसे लाशूरी तौर पे अमल कर जाता है, जिसका रिजल्ट कहां निकलेगा आखिरत में, अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे आप लोग। सोचें इसमें किसको शक हो सकता है, जब बता अल्लाह रहा है, फरमा अल्लाह के रसूल रहे हैं, तो शक किस चीज किस में, अमल कौन सा है ये जो आप बैठे किसको कर रहे हैं, यानी इसको पता ही नहीं था हमें इसका रिजल्ट ये निकलता है, हमें नहीं पता था जो अमल बैठे हैं इसका रिजल्ट ये है। वरना तो आज मस्जिद गया, बाहर टेंट गया, सड़कें कुछ पता चल जाए, कल जो है क़यामत आ जाएगी और क़यामत के बाद ये सीन होगा, तमाम को ढूंढना पड़ेगा और जो ये अमल कर लेगा वो अर्श के साए में चला जाएगा, जगह होगी कि बोल ट्रेन तक नहीं होगी जगह कोई पता है। तो आज कहाँ है, आज क्या ये बात आज को समझ नहीं आ रही, तो कल जो हो हम कल तो ये भी तो कल ही है ना, अंदाजा लग गया किस कदर इंसान धोखे के अंदर है, कितना खूबसूरत अल्लाह पाक ने ये नहीं कि हमें बताया नहीं, फरमाया इसी हदीस के अंदर फरमाते हैं कि वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और याद करते करते उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, रोना शुरू कर देता है। अल्लाह कहता है कि इस ऐसे शख्स को, ऐसे मर्द को जो ये फेल करता है, तन्हाई हो, अल्लाह का जिक्र हो और रो रहा हो, फरमाया आज गारंटी देता हूं, ये दुनिया में बैठ के ये काम कर रहा है, आज अल्लाह कहता है मैं गारंटी देता हूं कि जिस वक्त क्यामत कायम होगी फौरन उसको उठा के अर्श के साए के अंदर रख दिया जाएगा। ये है जिक्र अल्लाह का दोस्तों, क्या है इसमें बड़ी चीज, रोना हर वक्त। आज जो है मैं खास जो आज के जमाने में जितना रोना है कभी शायद कोई नहीं रोया हुआ इतना, वो बड़ी चीज नहीं रोना। हमारा हाल तो ये है अगर चैटी काट गया तो हम रोने लगते हैं, दुकान की सेल डाउन हो जाए तो हम रोने लगते हैं। रोते देखे मैं लोगों, आपके पीछे कोई गाड़ी जा रहे हैं उसमें से कोई 1,000 pounds निकल गया, मैंने रोते देखे, हाँ मर गए मैं लुट गया, अब मैं क्या करूँ भाई, फिर तो अब घर गए, घर चोरी हमारे चोरी ले गया, जी करें रोना तो इतना आसान है, यहाँ मुश्किल है बताएं। अल्लाह ताला रोते तो हैं, चींटी काट जाए रोते हैं, कोई मर जाए उस पर रोते हैं, मकान छत गिर जाए उस पर रोते हैं, कोई आदमी थप्पड़ मार दे उस पर रोते हैं, कोई आदमी जुल्म कर दे उस पर रोते हैं, है या रोना नहीं है, हर वक्त रोना। आशिक को देखो रोते, मेरे जनाब अपने माशूक के लिए रोता फिरता है, सब कुछ भूल जाता है, वो तो गिरेवानी भाड़ लेता है एक औरत के पीछे, है या नहीं रोना। हमारा रोना तो हमारे नाक पर रखा हुआ, कितनी बड़ी क्या चीज़ है, लेकिन इस रोने की क्या है, कोई कदर नहीं है। आप आज आपको दौलत के लिए रोता नजर आएगा, औरत के लिए रोता नजर आएगा, आदमी किसी तकलीफ पे रोता नजर आएगा, किसी मकान की वजह से रोता नजर आएगा, माल की कमी होने के बाद रोता नजर आएगा, लेकिन आज जो रोता हुआ नजर नहीं आता तो सिर्फ एक शख्स है, वो क्या, कोई आदमी आपको अल्लाह के लिए रोता नजर नहीं आता। मुझे बता दें कितने आदमी रोते, मैं भी हूं आपके साथ, आप भी, तो हाथ खड़ा कर लेना कि हम कितनी दफा रोए हैं इस जिंदगी में, हमें अल्लाह के लिए कितनी दफा बैठ के रोए हैं, अल्लाह याद आ रहा है, बेबे याद आती है, चाचा याद आता है, मामा याद आता है, बच्चा याद आता है, बीवी याद आती है, बाप याद आता है, सब याद आते हैं, रोते हैं, और कभी अल्लाह के लिए भी रोए कि अल्लाह याद आ जाए, हाय हाय। मुझे बताएं कितने सख्त दिल हो गए हमारे कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह के लिए रोना ही नहीं आता, जो खालिक है मालिक है, जिसकी मोहब्बतों का जवाब ही कोई नहीं, जिस मोहब्बतों के लिए हम रो रहे हैं, सारी मोहब्बत मिली कहां से, उसके सदके से एक रहमत का छींटा मारा है तो मोहब्बतें बिखर गई जिसमें हम रोते फिरते हैं, लेकिन जो हकीकी मालिक है हमें रोने नहीं आता। भाई जब रोने ही नहीं आता तो मुझे बताएं अर्श के नीचे साए में हमें जगह कैसे मिलेगी, क्वेश्चन तो ये है ना, अफसान मैंने कोई रोके दिखा दे। और जिनको रोना ना, जिनको रोना आ गया अल्लाह के लिए, जिंदगी में उनको हंसना नहीं आता, सुभान अल्लाह, उनको हंस भूल जाते हैं। इंसान के पत्थर, आज मूसा अलैहिस्सलाम के सामने किस्सा मैंने पहले से सुनाया आपको, तशरीफ ले जा रहे हैं तो पत्थर रो रहे हैं, अल्लाह के पास जा रहे हैं बात करने, पत्थर रो रहा है, वो क्यों रो रहा है, आप वक्त के नबी मेरी एक फरियाद तो सुन रहे, क्या बात है रो क्यों रहा है, क्या कह जी आप जा रहे हैं अल्लाह ताला के पास जा ही रहे हैं, मेरी तो एक अर्जी पेश कर दें कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहाँ मैं पत्थर को जो है ईंधन का ईंधन बनाऊंगा, जहन्नुम का ईंधन बनाऊंगा, वो कहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं भी पत्थर, मैं तो उस गम में रो रहा हूँ, मेरा हाल क्या हुआ, देखें पत्थरों को पता है कि क़यामत आएगी तो मुझे जलाया जाएगा, लेकिन आज मुझे नहीं पता कि क़यामत आएगी तो मुझसे ठहराया जाएगा, धोखा है या नहीं है, थोड़ा सोचा نماز چھوڑتے ہوئے، اللہ کی فرمان کو چھوڑتے ہوئے، نبی پاک کی سنت کو چھوڑتے ہوئے، خدا کے لیے سوچ لیا کریں کہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے زمانہ. آج نوکری کے لیے آپ ایک ملک سے دوسرا ملک، دوسرے ملک تیسرا ملک، ویزے اور پتہ نہیں کیا، شادیاں، ساری زندگی اس پہ خرچ ہو جاتی ہے کہ بھائی یہاں بس دوسرے ملک میں جائیں گے تو کیا ہوگا، بس چوزہ مل جائے گی. جو وہاں اس ملک میں بیٹھے ہیں کبھی بھوکا مرا کہ وہ بھی کھاتے ہیں الحمدللہ. ان کی جا کر دیکھیں ہمارے شکر تو 12 بجے ہوتے ہیں ماشاء اللہ، خوب تندرست ہوتے ہیں، تازہ ہوا، تازہ چیزیں، تازہ آم، تازہ جامن، ہر موسم کا پھل. یہاں تو پھل آتے ہیں وہ بھی جناب غذا پیٹا ڈبوں میں باندھا، پتہ نہیں کیا سڑا ہو، کیڑے پڑے ہوئے. یہ دیکھیں آپ، ہم نے اس کی قربانی کتنی دی ہے. آپ یہ دیکھیں ہمیں رونے نہیں آئے، ہمیں کبھی رونے آئے کہ میں پتھر تو کہہ رہا ہے کہ یا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ یا نبی میں ہی وہ پتھر ہوں، ہمیں کبھی احساس نہیں. میں کہتا یہ جائے گا جہنم، میں نے تو نہیں جانا، اس نے جانا ہوگا جہنم، میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا. کتنا انسان سخت ہو گیا، معمولی چیز تو جو اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا رونے پر، کتنا بڑا انعام دیا، کوئی نہیں رو سکتا، بیٹھ جائے آنکھ بند کر نہیں آئے گا رونا، پھر بھی خیال ہو جائیں گے جو دنیا کی محبتوں پہ رونا آئے گا، اللہ کی خاطر رونا کون روتا ہے. پتھر کہہ رہے کیوں رو رہا ہے تو، کیا ہے؟ کہ جی میں تو ڈر رہا ہوں، میں وہی پتھر ہوں جس کو جہنم میں جلایا جائے گا، میرا تو برا حال، ہچکی لگی پتھر کی. نبی کے اللہ طاقت دیتا ہے کہ وہ ہے سنتے ہیں، جانوروں کی باتیں بھی سنتے ہیں، درختوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، پتھروں بھی سنتے ہیں. اللہ کی دیوی شان ہے، عطا ہے نبیوں کو شان میں رکھتا ہے، ان کو مقام یہ ہے، اس کے صدقے سے اللہ کو دیا جاتا ہے مقام، ان کو بھی مل جاتا ہے مقام. تو میں اس نے سمجھا کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں آپ سب سے، تجھے نہ ڈالیں اس میں، کیونکہ تو بہت سخت پریشان ہے، اس نے جا کے اللہ سے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بول دے تو نہیں جائے گا پتھر واپس ہے. بھائی مبارک ہو تجھے، کیا ہو کہ تو بخش، تیرا کام بن گیا، یہی ہے نا. تو آج اللہ تعالیٰ ہمارا کام نہیں بنا رہے، بخشا رہے نہیں کہ تم اللہ کا ذکر کر لو، میں تمہیں بخش دوں گا. کریں گے ذکر، مجھے کرو نا، کیا بات ہے، شرم آ رہی ذکر کے نام سے. چلو اللہ اکبر. ذکر سے ڈرتے ہیں لوگ، جہنم پسند ہے، وہ قیامت پسند ہے، یہ پسند نہیں کہ اللہ کو یاد کر. تو اس نے کہا پتھر، بڑا سنا بازی چکا، کام بن گیا، اس کا رونا بند ہو گیا، ختم. تو ہنسنا چاہیے تھا اس کو، پھر گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے، تو پھر ہچکی مار رہے. اب تو جناب اس کا رونا عجیب طریقہ تھا رو رہا، لیکن عجیب طریقے سے رونے کے بھی کئی اسٹائل ہوتے ہیں. جب آدمی عورت کے لیے روتا ہے نا، اس کا رونا کچھ اور ہوتا ہے، بھائی میری شادی ہو جاتی تو، بھائی اس کا رونا کچھ اور ہوتا ہے. دولت کے رونا کچھ اور ہوتا ہے، تھپڑ جب پڑتا ہے اس کا رونا کچھ اور ہوتا ہے، کبھی کبھی سینڈل بھی پڑ جاتا ہے نا محبت کے اندر، تو اس کا رونا بھی کچھ اور ہوتا ہے، رونے کچھ ٹائم تھا. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہا آج تو پتھر جو رو رہا ہے یہ تو بھائی عشقیا رونا نظر آ رہا ہے اس کو، یہ آنسو تو ڈفرنٹ ہے اس کے، وہ تو خوف کے آنسو تھے، یہ جو آج رو رہا ہے یہ تو آہ نکل لی عاشق کے دل سے. سبحان اللہ، یہ تو کوئی دوسرا معاملہ اس کا ہو گیا، پتھر عاشق بن چکا یہ تو. نہیں بھائی اب کیا تکلیف ہے تجھے، کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں بات کرنے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو بھی تیرا کام بن گیا تھا. کہتا موسیٰ وہ تو نے مجھے روتا دیکھا تھا، تو وہ تمہیں خوف سے رو رہا تھا، لیکن جب آ کے تم نے خوشخبری بتائی، اللہ کے ساتھ جب میرے تعلق ہوا تو میں تو ذاکر ہو گیا، میں نے ذکر شروع کیا، اللہ کا شکر کیا. جب ذکر شروع کیا تو اب یہ میرا عشق کا رونا شروع ہو گیا، محبت کا، اب مجھے محبت ہو گئی، اب میں اللہ کی یاد میں رو رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں محبت کا رونا. پتھر سی سبق سیکھ لیں ہم، تو پتہ کیا چلا، بڑی دیکھیں رونا نہیں آتا. آج ہم نے حدیث تو سن لی، اب ہمیں پتہ بھی ہے کہ ایک عمل یہ بھی ہمارا ہو جائے کہ ہمیں رونا آ جائے، کس کے لیے؟ کسی اور کے لیے نہ، دنیا کے لیے، دولت کے لیے مانگ روتے ہیں، لیکن اب یہ ہو جائے کہ یار جہاں بیٹھوں اور میں نے دیکھا ہے کیسا انسان، میں نے ایسا انسان دیکھا ہے، اللہ کا نام اس کے سامنے آپ نہیں لے سکتے تھے، ڈرتے تھے ہم نام لیتے، ذرا اونچا نام لیا اس کی ہچکیاں بن جاتی تھیں. سبحان اللہ، کیا عشق ہو مجھے بتایا اللہ کا. بھائی اللہ نے جب ایک بات کی ہے تو ہوتی ہوگی وہ چیز، روتے ہوں گے لوگ، روتے ہوں گے لوگ، پتھر جو رو سکتا تھا انسان نہیں رہوگا جس کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کو پیدا کیا. تو کیا دیکھیں، سنو پھر حدیث پھر سناتا ہوں، پڑھتا ہوں اس سلسلے میں. तो अब तो दिल तो हमारे पत्थरों से भी सख्त हो गए हैं, लेकिन हमें अब अर्श के साए के नीचे रहना है। तो अल्लाह ताला ने इसी हदीस में चलते हैं, तुम्हारा रोना तलाश करें इसी में। फरमाया तन्हाई हो एक हन, और फिर क्या हो, अल्लाह का जिक्र हो और वो रो रहा हो, तो साफ क्लियर होगी बात। अगर रोना सीखना है तो दो काम कर लें, क्या कि तन्हाई के अंदर बैठ के कसरत जिक्र करे आदमी, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी इंसान, गारंटी दे रही है हदीस हमें। आज अगर हमें रोना नहीं आता, इस चीज को हम पकड़ लें, इस अमल को, ये हदीस बता, ये अमल बता रही है, क्या कि बैठा करें थोड़ी तन्हाई के अंदर, तन्हाई बना लें, कमरा बना लें अपना, बनाए सिटिंग रूम है या फला रूम है, फला रूम है, एक हुजरा बना लें छोटा सा, बस इतना ही उसमें मसल्ला डाल सके, मसल्ला डाल सके, ऐसा बना लें सीढ़ियों के नीचे बना लें और उसमें डाल दें पर्दा, कहते यहाँ कोई ना है, यहाँ मैं हूँ, मेरा अल्लाह होता है, कोई नहीं होता यहाँ पर, रख लें तस्वीर मजे में देता हूँ आपको अल्लाह की, आँख करें बंद, होगी तन्हाई, क्योंकि हमने वो काम करना है जो हमें हदीस ने बताई, कहते अल्लाह ताला मेरा काम तो है करना है, असल तो तू नहीं देनी सारी बात, नकल तो करें इस बात की, बस तन्हाई हो, और तन्हाई में क्या हो, अल्लाह का जिक्र हो, और नीयत क्या हो, अल्लाह ताला मैं रोना चाहता हूँ, तेरी मोहब्बत मुझे ये सिखा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए, कि जब तेरा नाम आए मुझे इतनी मोहब्बत उससे हो जाए, तो तेरा नाम आते ही मेरी आंखों का आंसू, आंखों से आंसू छलकना शुरू हो जाए, जैसे मोहब्बत से जाम छलकते हैं इंसान के, मेरी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाए। रोजगार दिन फरमाते हैं सुबहान अल्लाह, जिसकी आंखों ने ये सीख लिया अल्लाह के जिक्र से रोना, अल्लाह हो अकबर, हकीकत में है उसका जिक्र जो है कामयाब हो गया, जिक्र कामयाब हो गया, वो मंजिल मार गया, सही सोर्स उसने अख्तर कर लिया। तो मेरे भाइयों, ये जिक्र की मजलिस थी, तो ये हदीस मुझे याद आ गई, इसकी तशी अल्लाह ने खुद ही करा दी थोड़ी बहुत, लेकिन काम की बात है, वक्त ज़ाय ना करें, जिंदगी ना ज़ाय करें, रोना सीखें, अल्लाह की मोहब्बत हमें दिल की उतर जाए, बड़ी मोहब्बतें दिल में जमाएं, बड़ी जमाएं, बहुत जमाएं, बस तरीका बता दिया अल्लाह पाक ने, हम वो कर लें कि तन्हाई में बैठ जाएं, तन्हाई में तस्वीर को पकड़ें और अल्लाह के जिक्र को खड़काना शुरू कर दें, आधा घंटा पौना घंटा रोज, एक मामूल आदमी रख लें, इसे अल्लाह वाले जिक्र सीखे लें, बस दरवाजा बंद, उसमें कुछ भी नहीं हमने करना, बैठ के अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और कहते जाए अल्लाह ताला जब तक तेरी मोहब्बत नहीं आएगी मेरे दिल में, मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुझे अल्लाह। एक शेर था भी बड़ा खूबसूरत, जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, बड़ा प्यारा शेर था, इसका मफहूम ये था, बड़ा खूबसूरत शेर, अगर आ जाए तो महसूस होते हैं आप लोग, क्या है कि भाई जिक्र जब इंसान करता है तो क्या है, खाली नहीं होता, जिक्र करता है तो शायर क्या कहता है कि जिक्र मेरा खाली नहीं जा रहा, बल्कि क्या है कि मैं जिसका जिक्र करता हूं वो भी मुझे मेरा जिक्र कर रहा है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो भी मेरा जिक्र कर रहा है। तो अगला मिसरा बड़ा खूबसूरत है, उसमें कहता है शायर, वो क्या कहता है कि सुभान अल्लाह, तू तो जिक्र ही कर रहा था, तेरी जिक्र ने इतना बुलंद तुझे कर दिया, वो शर्फ तुझे बख्श दिया कि तू मस्कूर हो गया। शेर में बहुत लुत्फ आता शेर का, कि भाई तू तो जिक्र करने बैठा था, लेकिन तेरा इस जिक्र के सदके से इतना शर्फ हासिल कर लिया तूने, इतना मुकाम हासिल कर लिया कि तू तो जिक्र कर रहा था लेकिन तू मस्कूर हो गया, कि खुद तेरा जिक्र होना शुरू हो गया। ये है अल्लाह का जिक्र, इंसान अल्लाह का जिक्र शुरू है कि भाई मैं तो अल्लाह को याद कर रहा हूं, अल्लाह ताला उसको इतना बुलंद कर देता है कि सारी दुनिया उसको याद करना शुरू कर देती है, वो मस्कूर हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला इतना बुलंद इंसान को कर देता है। अल्लाह पाक हमें जिक्र की तौफीक नसीब करे।